الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترمہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں آج کے اس سبق میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے بارے میں ایک خاص نصیحت کو لکھ رہے ہیں جس حدیث کو نقل کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے گریٹ صحابی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے ان کے سوتیلے بھائی ابو طلحہ ان کے سوتیلے والد جو تھے ابو طلحہ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن پھر ان کی ماں نے نکاح کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے پرورش پائی ابو طلحہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کوئی اچھا خادم ہو میری خدمت کرنے والا تو اس کو لے آؤ باہر سے سودا لانا ہو مارکیٹ سے یا کچھ بھی کام ہو تو کوئی اچھا لڑکا ہو لے آؤ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے بیٹے سوتیلے بیٹے یعنی پہلے باپ کے بیٹے تھے حضرت انس ان کو اپنی اونٹ پر بٹھایا کہ چلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اس وقت اس بچے کی عمر 10 سال کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی کی عمر صرف 10 سال کی تھی ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس ہے یہ آپ کی خدمت کریں گے آپ کا جو بھی کام ہوگا یہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرمایا قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انتقال ہونے تک خدمت کی جب وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو ہے ان کی عمر حضرت انس کی عمر وہ 20 سال کی تھی ہمارے یہاں 20 سال کا بچہ تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا دوسرے کی کیا کرے گا دس سال انہوں نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کمال ہے اس بچے کا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر رہ کر دس سال خدمت کی. حضرت انس خود کہتے ہیں میں تو بچہ تھا اور بچوں کا مزاج کھیل کود کا ہوتا ہے. میری نانی اور میری دادی اور میری ماں ام سلیم اور میری خالہ یہ سب مجھے سمجھا بجھا کر ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کے نبی کا ہر کام کرنا ہے تمہیں, ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے, کھیلنے نہیں جانا, سمجھاتی تھی. یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کام کے لیے بھیجا تو راستے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. کام تو اللہ کے نبی کا ایک طرف رہ گیا, اللہ کے نبی کے ربی نہیں آیا. گئے تو دیکھا راستے میں کام بچوں کے ساتھ کھیل رہے, بچہ ہوتا ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث سن کر یہ حدیث نقل کر رہے, بہت زبردست حدیث. المرأۃ اذا صلت خمسہا, عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے. بس کتنی بار؟ پانچ وقت کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھ لے. The woman performed the five salah daily. وصامت شہرہا, اور جب رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھ لے. وآحسنت فرجہا, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے, غلط کام نہ کرے, زینا نہ کرے. وطاعت بعلہا, شادی ہو جائے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. ایک تو پانچ وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. وطاعت بعلہا, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, شوہر کے مال کی اور اولاد کی. تو کیا فرمایا؟ نماز, روزہ, شرمگاہ کی حفاظت, شوہر کی فرما برداری. فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت, جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے, جس دروازے سے. آٹھ دروازے ہیں. بہت آسان نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بیان فرمایا. پہلی چیز نماز. نماز بہت ضروری ہے. یہ نماز ہے, اس کا حکم دنیا میں نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو عرش کے پاس اللہ نے اپنے نبی کو نماز دی ہے, بہت اونچے جگہ پر دی ہے, تو نماز کا ثواب بھی بہت اونچا ہے. اور معراج کا واقعہ تو مشہور ہے, ابھی وقت نہیں اس واقعے میں جانے کا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت دو تین نہیں پڑتی تمہاری, پچاس کیسے پڑے گی؟ کم کراؤ, کم کراؤ, کم کراؤ. کتنی ہو گئی؟ پانچ. اللہ نے فرمایا تیری امت پانچ پڑے گی, میں پچاس کا ثواب دوں گا. بہت آسان. فرض نمازیں بہت ضروری ہیں. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں رشتہ ہے نماز, یہی چیز ہے. اور اسی سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جب جی چاہا تب پڑھ لی. اگر اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کا ہوتا ہے کتنی پابندی کرتے ہیں, وکیل کا اپوائنٹمنٹ کتنی پابندی کرتے ہیں, یا اور کوئی اپوائنٹمنٹ ہو تو بہت پابندی کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے اس ٹائم کا جو نماز کی ہم پابندی نہیں کرتے. کوئی ٹیکس بھی نہیں. جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا, بڑی عظمت والا, بڑی بڑائی والا, پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ अपने नाम लेने की हमें इजाजत देता है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। 24 घंटे में सिर्फ 5 नमाजें दी है, बाकी तुम अपना काम करो। लेकिन मेरे सामने 5 नमाजें पढ़ ले, 24 घंटे में हम 1 घंटा अल्लाह को दे दो, बाकी 23 तुम्हारा। लेकिन वो 1 घंटा भी अल्लाह को देने के लिए तैयार नहीं है। हम 5 नमाज की बात करते, वैसे भी हमारी नमाज तो 10 मिनट में हो जाती है, 50 मिनट में सब खत्म हो ही जाता है। बहुत बहुत तो 10 मिनट और मिला लो, 1 घंटा, बाकी 23 घंटे तुम अपने लिए। लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह मेरे सजदों का मोहताज नहीं है, अल्लाह मेरी रुकू और तिलावत और जिक्र अजकार का मोहताज नहीं है। अल्लाह की शान तो वही है जो है। बल्कि उससे तो हमारा ही फायदा है। अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, हदीस कुदसी है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का इरशाद नकल फरमाते हैं, या इबादी लो अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्ब रजुल वाहिद मिनकुम मा ज़ाद ज़ालिक फी मुल्की शैया। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात सब के सब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, सबका दर्जा अबू बकर सिद्दीक जैसा हो जाए, नबियों जैसा हो जाए, अगर बिलफर्ज मान ले बहुत बड़े दर्जे हो जाए, साहबी के दर्जे पर पहुंच जाए, दर्जे पर तो पहुंच नहीं सकता, लेकिन ऐसी इबादत कर ले तो भी तुम में से कोई भी एक रट्टी राई के दाने के बराबर भी मेरी हुकूमत में ज्यादती नहीं कर सकते। मेरी हुकूमत तो जो है वही है। मा ज़ाद ज़ालिक फी मुल्की शैया, मेरी तुम्हारे सारे फरमा बरदार बन जाने से मेरे मुल्क में, मेरी अजमत में, मेरी किबरियाई में, मेरी बड़ाई में कोई ज्यादती होने वाली नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। या इबादी लव अन्न वलकुम वाकिरकुम वइंसकुम वजिन्नकुम कानू अला अबजरि कल्बि रजुलिन वाहिदिन मा नस्मा नकस ज़ालिका मिन मुल्की शैया। सारी दुनिया जिन्नात और इंसान सब के सब फाजिर हो जाए, शैतान जैसे काम करे पूरी दुनिया। फरमाया फिर भी अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, मेरी शान में, मेरी आजमत में, मेरी किबरियाई में, मेरी बराई में राई के दाने के बराबर कमी होने वाली नहीं, कभी नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तू नेकी करेगा तो तेरा फायदा, गुनाह करेगा तो तेरा नुकसान, अल्लाह का उसमें कोई नुकसान। आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां फरिश्ते कोई इबादत में मशगूल ना हो, कोई कयाम में खड़े हुए हैं पूरे, कोई रुकू में है, कोई सजदा में है, कोई अत्तहियात में है, कोई जिक्र में लगे हैं, तो अल्लाह की शान में तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, चाहे मैं पढ़ूं नमाज या ना पढ़ूं। हां एक बात जरूर है, मैं तो कहा करता हूं, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। हमारी जबान तो इतनी गंदी है कि जबान से न मालूम कैसे कैसे बकवास और कैसे कैसे गुनाह करते, फिर भी अल्लाह हमारी गंदी जबान से अगर हजार बार मुश्क अंबर से धो ले, फिर भी गंदी है, लेकिन फिर भी अल्लाह अपना प्यारा नाम, अपनी प्यारी तारीफ कुरान नमाज हमारी जबान से पढ़वाता है। कहां उस लायक है, ये तो अल्लाह का कर्म है। अल्लाह तबारक व ताला गंदे होने के बावजूद अपनी मस्जिद में, अपने दरबार में 5 वक्त बुलाता है, आ जाओ मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला बड़ा इकराम करता है। तो इससे मालूम हो गया कि ये जो चीज है नमाज, ये दीन का सुतून है। हदीस में आता अब्दुल्ला इब्न उमर नकल फरमाते हैं, ला सला ला दीन लिमन ला सलात ला, उस आदमी का और उस औरत का दीन ही नहीं है जो नमाज नहीं पढ़े। ला सला, हाँ दीन ही नहीं उसका। इन्नमा मौज उस सलात मिन दीन कमौज रासी मिनल जसद, नमाज पूरे दीन में ऐसी है जैसे मेरा सर पूरे बदन में। अगर कोई आदमी गले से सर काटे तो वो इंसान जिंदा रहने वाला नहीं है, खत्म हो गया। इसी तरह नमाज न पढ़े तो उसका दिन खत्म हो गया। ये अल्लाह के नबी फरमाना चाहते, ला दीना लिमल्ला सलातला, जो नमाज न पढ़े पांच वक्त की उसका दीन ही नहीं है। और नमाज दीन में बदन में सर की तरह है, अल्लाह के नबी फरमाते, ये है नमाज का मकाम सर की तरह। और फरमाया भाई मुस्लिम शरीफ की सही हदीस, बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्क सला, गैर मुस्लिम और मुसलमान के दरमियान फर्क नमाज छोड़ने का है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता, ये फर्क है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नमाज न पढ़े इस्लाम में उसका कोई शेज नहीं है। ला सहमा फिल इस्लामी लिमन ला सलातला, कोई शेज नहीं उसका, इस्लाम में ही नहीं। बाज अकाबिरी ने तो कहा जो नमाज न पढ़े उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन न करो, बड़े बड़े अकाबिरी ने कहा। ये चीज है। और एक रिवायत में है, अस्सलातु इमादु दीन, नमाज दीन का पिलर है। जैसे ये मस्जिद में पिलर लगे हैं ना, ये पिलर है। मन अकामहा, जिसने नमाज पढ़ी, फकत अकामत दीन, उसने पिलर को बाकी रखा। वह मन हदमहा, फकत हदमत दीन, और जिसने नमाज दो सुदनों परफॉर्म सला, they destroyed the pillars of Islam, pillars of deen, pillars of religion. ये चीज सहाबियात, हजरत अनस क्या फरमाते, सल्लत खमसहा, पांच वक्त की नमाज पढ़े वो औरत नंबर वन। सहाबिया का मकाम ये था कि बहुत ही ज्यादा खुशू और खुजू के साथ अव्वले वक्त में पांच वक्त की नमाज पढ़ते। इसलिए जो नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज की वजह से उसके दूसरे दिन में अल्लाह उसकी मदद करता है। जो नमाज नहीं पढ़ता, अब पूरे घर का नमाजी बनने का मदार, नेक बनने का मदार मां है। हां नमाज बड़ी अहमियत की चीज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए घर को अगर नमाजियों से आबाद करना चाहते हो तो घर की औरतें नमाज पढ़ें, द वुमन मस्ट परफॉर्म सला। अगर घर की औरतें आदत बना ले तो मैं समझता हूं कि घर वाले नमाज पढ़ेंगे, जबकि मां को देखकर छोटा बच्चा भी पढ़ता है। तो घर में अगर नमाज होगी तो अल्लाह उस घर में बरकत रहमत और उस घर वालों को भी नेक बनाएगा। लेकिन हमारे घर के अंदर में मैं अपनी मां और बेटी और बहनों से कहूंगा, कोई ऐसा फर्द बाकी न रहे जो नमाज का इहतमाम न करता हो, नमाज की पाबंदी हो, टाइम पर नमाज पढ़ ले, बस यही चीज है। जब वो औरत पांच काम कर ले, एक तो इदा सल्लत खमसहा, जब पांच वक्त की नमाज पढ़ ले, और नमाज भी थोड़ा खुशी और खुजू के साथ, बचपन वाली नमाज नहीं जो बचपन में हम पढ़ते थे, अप एंड डाउन, किस द ग्राउंड, रन टू टाउन, और ये बिचारी का अन टू पाउन करेगी, किचन टू पाउन, वो कुक टू किचन करेगी और क्या। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। सहाबे किराम बाकायदा प्रैक्टिकली नमाज बतलाते थे कि कैसे पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, नमाज भी सीखी जाती है। तो एक तो हो गई ये बात, उसके लिए वुजू भी अच्छा करें, अच्छी तरह वुजू करें। अभी मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई, जो मौलाना थाम्बी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आते, उनके सनिनलो जो है मौलाना हकीम कलीमुल्लाह साहब, बहुत बड़े आलिम, फरमाते हैं ये खलीफा है हजरत मौलाना शाह अहमद साहब प्रतापगढ़ी, हमारे हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई होते हैं। तो उन्होंने वाक्या सुनाया, ही मेंशन्ड अ स्टोरी, एक आदमी उनके पास आया और कहा बहुत कर्जा है हजरत, कोई वजीफा दीजिए, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, इट्स लॉट्स ऑफ टैप्ड ऑन माय हेड, प्लीज गिव मी सम वजीफा। हजरत ने उसको कहा खाने से पहले दोनों हाथ धो लीजिए, खाने से पहले हाथ धो ले, वॉश योर हैंड। सो लेकिन धोते वक्त नियत करें, हजरत ने क्या कहा, ऐसे नहीं धो ले खाने की शौक में, नियत करें कि मेरे नबी ने खाने से पहले हाथ धोया, उस सुन्नत को मैं अदा करता हूं। ये दिलो दिमाग में होना चाहिए, दैट माय नबी आल्सो वॉश्ड हिज बोथ हैंड बिफोर ईटिंग, सो आई एम प्रैक्टिस की द सेम सुन्ना, ये दिमाग में रखें। और रिश्त हाथ धोना चाहिए, ऐसा नहीं खाली हम इतना उंगली धोते हैं, रिश्त हाथ धोना सुन्नत। फिर खाने के बाद भी इस तरह हाथ धो ले, खाने के बाद भी यही तसव्वुर कायम कर, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी कर रहा हूं, बस सुन्नत की पैरवी दिमाग में रखकर धोना है, खाने से पहले खाने के बाद, ये तो सुन्नत है, सुन्नत समझ कर। हकीम कलीमुल्लाह साहब फरमाते हैं चंद दिनों के बाद वो आदमी मेरे पास आया, इसको कर्ज का वजीफा बताया, ये वजीफा है, वो लंबा चौड़ा वजीफा, यार रज़ा को पढ़ा करो, ऐसा नहीं 12,200 मरतबा, नहीं ये वजीफा है, सिंपल वजीफा। हजरत खुद फरमाते हैं कि वो आदमी चंद दिनों के बाद आया और कहा कि मेरा तो कर्ज अल्लाह पाक ने अदा ही करवा दिया, इतना ज्यादा कर्जा था अल्लाह ने अदा करवा दिया। ये शाहबुर हक्सा भरदोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हकीम कलीमुल्लाह साहब कहते हैं मेरा जाती तजुर्बा है। अब एक सुन्नत पर यह है, हर सुन्नत को हम सुन्नत समझ कर करेंगे तो कितना फायदा होगा, अंदाजा लगाओ। ये तो बहुत आसान नुस्खा है, वेरी सिंपल। उसके बाद मैंने जिसको भी बतलाया, हजरत फरमाते हैं जिसको भी, हर एक का कर्ज अदा हो गया। अब ट्राई करें इसको, हजरत की बात जो लिखी हुई है। तो वुजू भी सुन्नत के मुताबिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर में बहुत अजीब अजीब फायदे, बहुत अजीब अजीब फायदे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सो घर में मां और बहनों को चाहिए कि दीनी माहौल बनाए, मेक योर हाउस द दीनी माहौल, द शैतान डोंट इवन नो गोइंग टू कम इन द हाउस टू, व्हेन यू एंटर इन द हाउस आयतुल कुर्सी, व्हेन यू कम आउट आयतुल कुर्सी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुन्नत, सारी सुन्नत। घर में सूरह बकरा ऑन करो, घर में ऑन, इफ यू पढ़ नहीं सकती है तो यू जस्ट ऑन द सूरह बकरा, घर में कुरान ऑन करो, अजान की आवाजें घर में आनी चाहिए जोर से, और खुद भी तस्बीहात की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन खबीस चीजों को खत्म करेंगे, जलसी को, जादूगरों के जादू को अल्लाह खत्म करेंगे। ये बहुत जरूरी है। आज से 6-7 साल पहले, चूंकि मैं तमिल शरीफ पढ़ाता हूं 17 ईयर्स से, तो उसकी शरह में मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जो उस्ताद अब शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो शेखुल हदीस इन सहरानपुर, ही टॉट तिर्मिज़ी शरीफ फॉर 40 इयर्स, उन्होंने कि तिर्मिजी शरीफ की शरह में लिखा है, जब कभी मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आया, एनी प्रॉब्लम्स केम इन माई लाइफ, मैंने सुन्नत के मुताबिक वुजू किया, सुन्नत के मुताबिक वुजू किया, और यानी मिसवाक है, उसके बाद नाक में पानी डालना, फिर कुल्ली करना, फिर तीन बार हाथ धोना, यानी रिस तक धोने के बाद फिर इस तरह करते हुए सुन्नत के मुताबिक बराबर से उंगलियों का खिलाल, पैरों में ठोस का खिलाल, ये सब नहीं बात, ये सब किया। उसके बाद बर्तन में जो बचा हुआ पानी होता है, उस जमाने में बर्तन में वुजू करते थे, आज तो टैप वाला मसला है तो उसमें भी कर सकते, लेकिन जो बर्तन होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बर्तन होता है, उसमें वुजू फरमाते थे। आप वुजू करने ऐसा पानी डालते थे ना, ऐसा हाथ धो लेते थे पहले ताकि अंदर में गंदा हाथ ना जाए। उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसमें से 3 सिप फ्रॉम द लेफ्ट ओवर वॉटर, 3 सिप जो पानी बचा है ना उसमें से 3 सिप खड़े होकर नियत करके पी लिया कि अल्लाह मेरा फुला मसला परेशानी का है तो उसको हल कर दे। फरमाया जब कभी मैंने किया अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया। ये सुन्नत का फायदा तो देखो, क्योंकि अल्लाह के नबी भी वुजू का बचा हुआ पानी, तिर्मिजी शरीफ में बाप है चैप्टर वुजू का बचा हुआ पानी, हमें टैप में कर ले तो आखिर में इस तरह 3 बार पी ले, नियत कर ले, लेकिन असल जो तरीका है सुन्नत का वो बर्तन वाला, उसमें जो बचा हुआ पानी है उसको वुजू से बचा हुआ पानी। ये इस किस्म की चीजें हमारे उलमा करते थे। एक बुजुर्ग ने वाक्य सुना है बहुत अजीब, खाना निकालने की तैयारी होती थी बीवी का भी, चलो भाई 12 बजे खाना खाना, फॉर एग्जांपल 1 बजे या 2 बजे खाना खाना है, उसके 10-15 मिनट पहले कहते मेरे वालिद साहब कहते थे पुट द सुफरा, दस्तरखान, दस्तरखान बिछा दिया जाता था, तो दस्तरखान बिछाना सुना अल्लाह के नबी दस्तरखान बिछाते, टेबल कुर्सी ऐसे बैठ के खाना नहीं खाते, बिछा के लीजिए मजबूर है अलग बात। तो वो दस्तरखान बिछाते थे और मामूली खाना होता था, अब आजकल तो आइटम बहुत सारी होती है, 10-15 आइटम होती है, उस जमाने में दस्तरखान बिछ गया, आप कहा मेरे वालिद साहब मेरी मां को कहते थे अभी खाना ना निकालो, 15 मिनट पहले दस्तरखान बिछाते थे, 15 मिनट पहले अभी खाना निकालो, सारे बच्चे बैठ जाते, हम सब मां बाप बेटे सारे बच्चियां हम सब बहनें बैठ जाती थी, तो सबसे पहले सारे बच्चों की नमाज सुनते थे, बताओ नमाज में कितने फर्ज है, इस तरह सुनते थे, नमाज में कितने तशहुद पढ़ो, अत्तहिया सुनाओ मुझे, दुरूद इब्राहिम सुनाओ, रुकू की तस्बीह सुनाओ, इस तरह घर की तरबियत करते थे हमारे, का वो बचपन की सारी बातें हमें अब तक आज तक याद है, खाना नहीं मिलेगा अगर याद नहीं है तो, 15 मिनट पहले मदरसा होता था दस्तरखान के ऊपर, जरा के स्मॉल मदरसा, जैसे घर का मदरसा ही है कोई मां आज, अल्लाह हु अकबर। मौलाना जुल्फिकार साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस फलाहदारैन तरकेसर, अल्लाह इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, तरकेसर का मदरसा चलाने वाली असल फैमिली तो रियूनियन में है, उसके खास जो रिस्पॉन्सिबल थे बनाने वाले और मदरसा चलाने वाले पैसा वगैरह, हाजी यूसुफ साहब, इन हिज हाउस एवरी फ्राइडे, संडे को या जुमा को, वो अपनी सारी बेटियों को शादी होगी उनको बुलाते थे, संडे को या जुमा को, कम होम एंड सन इन लॉज को दावत, सबकी दावत, फैमिली फीस, सबको दावत, सबको जमा करते थे और घर में अच्छा खाना बनाते थे। साउथ अफ्रीका मास्टर है, वह साल में है या 6 महीने में, पूरी फैमिली जमा होती है, फिर उसमें बयान होता है, नसीहत होती है, और फिर उसके बाद खाना भी होता है। समझ नहीं बात होना चाहिए इस तरह। तो इस तरह इंतजाम होता था और बाकायदा मजलिस होती थी उसमें, और उस पर नमाज के अरकान तशहुद सबका सुना जाता था, दामाद का भी, सनी लोग का भी, सबका इंटरव्यू होता था, चलो तुम सुनाओ तुम सुनाओ तुम सुनाओ, और खाना भी अच्छा खिलाते थे। तो नहीं बात, तो इस तरह गोया के सबके लिए सबक पक्का हो जाता था, और फिर वहां पर मुख्तसर बाप बयान भी करता था, नमाज पढ़ना बेटी, सूरह तबारक पढ़ना, यासीन पढ़ना, तो रही ये प्रॉब्लम, मैंने ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। इस तरीके से एक मुख्तसर नसीहत भी हो जाती थी और आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आज तो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते थे, ये क्यों आगे बढ़ गया, ये क्यों पीछे चला, ये क्यों आगे बढ़ गया, ऐसा ही है ना। दे वांट टू सी ईच अदर, व्हाई ही इज प्रोग्रेसिंग सो मच, व्हाई ही गॉट अ माशाल्लाह बिग हाउस, व्हाई ही गॉट अ नाइस कार। हसद, जेलसी, हेट्रेड इतना हो गया है कि फैमिली टूट गई, वो दिल काला ही काला है, जबान से कितने ही सलाम करो, अंदर में तो काला ही काला है। अल्लाह अकबर। इसलिए सबसे पहली बात कि नमाज की पाबंदी घर के अंदर में होनी चाहिए, और साथ साथ में आगे दूसरी बात जो बयान की जा रही है जो बहुत ही जरूरी है, नंबर दो पर फरमाया वसामत सहरहा शहरहा, औरतें रमजान में जब रमजान आ जाए तो रोजे रखें, घर के अंदर माहौल होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते ला तजअलू बुयूतकुम कुबूर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाओ, कुछ तो करो अंदर में। कब्रिस्तान में भी कोई नमाज नहीं पढ़ता और कोई कुरान नहीं पढ़ता, अगर घर में भी ना पढ़े तो हमारे घर और कब्रिस्तान में क्या फर्क है। अल्लाह के नबी इसीलिए कहते हैं ला तजअलू बुयूतकुम कबरा कुबूरा, तुम अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। तो खास तौर पर औरतें घर में, माएं और बहनें नमाज की पाबंदी करें, और साथ साथ में क्या करें, कुरान की तिलावत करें। हां, दूसरी चीज है रमजान के रोजे, ये चीज कब्र में काम आने वाली है, कुरान सर पर आएगा कब्र में, ऐसा हो जाए पनिशमेंट को रोकेगा, नाउ यू कान हिट हर फ्रॉम द हेड साइड, दाहिनी तरफ नमाज आ जाएगी, कब्र की बात कर रहा हूं मैं, कयामत तो बाद है, कब्र में कितने साल सोना है पता नहीं है, कयामत तक सोना है, 50 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, कयामत कब आएगी पता नहीं है। वो सहाबा सो रहे 1400 ईयर्स से, आदम अलैहि सलाम 6-7-10 हजार साल हो गए सो रहे, कब्र में सोने का और अपने आप को बचाने का अमल बता रहा हूं। सबसे पहला सर की तरफ कुरान, रात में सोने से पहले तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क, कभी ना भूले, कभी ना भूले, ये कब्र में आकर रहेगी, द सूरह तबारक डेफिनेटली इज गोइंग टू कम इन हदीस, प्रोफेसर हसन सेड इन द कब्र एंड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पनिशमेंट। दानी तरफ नमाज, नमाज आ जाएगी, और लेफ्ट साइड में ये रोजा आएगा, रमजान के रोजे लेफ्ट साइड में, और पैर की तरफ जकात, उमरा और हज ये आएगा, क्योंकि ये बंदा और ये बंदी कमा करके पैरों से जाते थे ना कमाने के लिए, वट एवर यूज टू गॉट गेट द मनी वेन द ईयर फिनिश्ड दे यूज टू गिव फ्रॉम देयर सम ज़कात फ्रॉम द गो फॉर द गोल्ड ज़कात सिल्वर ज़कात और मनी वट एवर कैश ज़कात, तो वो पैर की तरफ होगी, वो चारों तरफ से और ऊपर लाइट हो जाएगी, सूरह तबारक की लाइट, कब्र में अंधेरा नहीं होगा अगर हम ये अमल करेंगे, बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा, इसको भी लाइट, वैसे तो अंधेरे में सोए तो वो तो छोटा सा कमरा होता है उसमें कब्र, तो वो कितनी परेशानी होती है, अल्लाह ताला उसको जहां तक तुम्हारी आंख पहुंचे, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचे, इतनी बड़ी कब्र बना देगा अल्लाह, अगर ये अमल किए, इसकी पाबंदी बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। हां, इसलिए नंबर दो पर क्या मिलेगा, रोजा रखना है और वो भी कब्र के अंदर आएगा और कयामत के दिन औरत जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से चली जाए। और आठ दरवाजे हैं, अल्लाह अकबर। अब आगे जो है उसके बाद फरमाया वो अहसनत फरजहा, अपने औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। सतर की, औरत का सतर जो है, औरत का नाम ही सतर है, इसीलिए हदीस में आता है मिश्कात शरीफ में, जब औरत निकलती है तो आगे एक शैतान होता है, पीछे एक शैतान होता है, दो शैतान, और कभी कभी सामने वाले की निगाह में औरत की शक्ल में शैतान उसको बहकाता है, औरत की शक्ल में। इसलिए बगैर जरूरत के घूमना भी नहीं चाहिए, जरूरत हो चली जाओ, लेकिन उसमें भी पर्दे का एहतमाम करो। ये बात तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले से बताई है, बहुत पहले से। एक सहाबिया, सुनो, चूंकि अब औरतों की बात कर रहा हूं, उम्मे खल्लाद रजी अल्लाह तआला, हसन बिकेम शहीद, माथे शहीद हो गया, वो आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, शिकेम तो रसूलल्लाह से ऐसे पर्दा डाल कर आई, शी हाइड हर, शी वाज वेयरिंग द वेल पर्दा। तो सहाबा किराम को ताज्जुब हो रहा है कि उसका एक बेटा था, शी हैव ओनली वन सन, एंड द सन आल्सो बिकेम शहीद। तो औरतें तो आमतौर पर एक बेटा मर जाए तो जजा फजा करती है, सबर नहीं होता है, रोटी है, स्कार्फ भी निकाल देती है, पर्दा भी निकाल देती है, या अकलौता बेटा शहीद हो गया, इंतकाल हो जाए। हालांकि बेटा भी कैसा था, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फतेह मक्का के मौके पर उस बच्चे पर मेरी निगाह पड़ी तो उसका बच्चा बिल्कुल बहुत ज्यादा यानी खूबसूरत। तो औरतें अकल खो देती है ना, तो अब ये निकाब डाल कर आई, साहबा को ताज्जुब होने लगा। जब सहाबिया औरत हजरत उम्मे खल्लाद ने साहबा की बात सुनी कि तुम क्या कह रहे हो मुझे, आई टेक ऑफ माई वेली, पर्दा निकाल दू, ताज्जुब करते हुए देखा तो क्या कहती है, फरमाती है मैंने अपना बेटा खोया, अपनी शर्म नहीं खोई। क्या बात, मैंने तो अपना बेटा खो दिया, अपनी शर्म नहीं खोई मेरे, आई डिडंट लॉस माई शेम, हया, पर्दा, ये चीज। बुखारी शरीफ के अंदर एक सहाबिया की रिवायत है, बुखारी शरीफ में, कि वो हाथों को के अंदर में ये जो मोजे पहनते हैं, ग्लव्स जिसको कहते हैं, वो पहनते हैं, और कह रहे हैं बुखारी शरीफ में है, हाथों के मोजे और उनके पास दस्ताने नहीं होते थे उस जमाने में गुर्बत की वजह से, तो वो आस्तीन को उंगलियों तक पहनती, यानी इसको है ना, ये आस्तीन यहां तक, ताकि किसी को मेरा हाथ नजर नहीं आए, अंदर में आस्तीन यहां तक होता है, ये सब नजर आता है जी। तो आस्तीन को उंगलियों के ऊपर अंदर में चलाकर इस तरह बाकायदा छुपा लेती थी, ये सहाबिया की आदत थी। हजरत सौदा का वाकया तो मशहूर है, लेकिन अगर मैं उस वाक्य को बयान करने जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। हजरत आयशा, चलो हजरत आयशा का सुन लो, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی روم میں دفن کیا گیا, جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں, عائشہ کا روم ہے, مکان جہاں سوتے تھے وہیں دفن بھی ہے, is buried in the same place, وہیں ان کا انتقال ہوا, تو نبی جہاں انتقال ہو وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کی طرف فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے شوہر تھے, ہی واز مائی ہسبینڈ, شوہر سے پردے کا تو کوئی سوال نہیں, اللہ کے نبی تو ویسے بھی قبر میں زندہ ہے, اسی لیے نبی کی عورتوں کی شادی بعد میں نہیں ہوتی, چونکہ ان کے شوہر کیا ہے, زندہ ہے. ہماری ہم مر جائیں تو عورتوں کی شادی ہوتی, اس لیے کہ ہم تو ختم ہی ہو گئے, نبی زندہ ہے ان کی عورتوں کی شادی نہیں ہوتی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, 20 سال سے لے کر کتنے سال تک, لیکن سنو واقعہ, ان کا مکان ہے نا, اللہ کے نبی کو وہاں دفن کیا تھا, میرا شوہر ہے, تو جاتی تھی اس مکان میں, پھر مکان بدل دیا تھا, لیکن آتی تھی کہاں, اپنے روم اس مکان میں آتی تھی, اپنے شوہر کی قبر پر, چونکہ کوئی نہیں وہاں. پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو وہ تو ان کے والد تھے, تو قبر میں دفن کیا, پڑوس میں دفن کیا, پھر بھی آتی تھی کہ میرے باپ بھی ہے, میرے شوہر بھی, ادھر اللہ کے نبی میرے شوہر ہے اور ادھر میرے باپ ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے انتقال کے بعد جاؤ پوچھ کر آؤ, اپنے بیٹے سے کہا حضرت عائشہ کو پوچھ کر آؤ کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ اس گھر میں میری قبر بنے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تمنا تو میری تھی کہ میں, میرا شوہر, میرے باپ اس گھر میں سوئے, لیکن حضرت عمر کو میں پریفرنس ترجیح دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہاں ان کی قبر ہو جائے. اس پر بس نہیں کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب میرا جنازہ لے جاؤ وہاں نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کے پاس, تو پھر پوچھنا کہ کیا ہم حضرت عمر کو یہاں دفن کریں, اندر سے آواز آئی ہاں ان کو یہاں دفن کر دو, تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. اب حضرت عمر رضی اللہ کے تو احتیاط تھا نا, کمرہ تو حضرت عائشہ کا تھا اور وہی اس کی مالکہ تھی, ان کا مکان ہے نا, حضرت عمر کا تو نہیں ہے, اس لیے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جا کر اجازت لے لو, شاید میری زندگی میں میری شرم کی وجہ سے ہاں کہہ دے, تو میرے مرنے کے بعد بھی جب جنازہ لے کر جاؤ, تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ پوچھا حضرت عائشہ سے, اجازت دے دی اور وہاں. اب دیکھیے پردے کا احترام, پہلے میں جاتی تھی کہ میرے گھر میں میرے نبی کے پاس یعنی میرے شوہر کے پاس اور حضرت میرے والد کے پاس, لیکن جب حضرت عمر کو وہاں دفن کیا تب سے میں نے وہاں جانا بند کر دیا, میں نے پردہ کر دیا اپنے مکان میں ملے. یہ چیز ہے, اس لیے یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. اور دو چار باتیں ہیں, وہ پانچ چیزیں مجھے ختم کرنی ہے نا, تو ابھی یہ خاص چیز ہے, حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ دری کیسی تھی انشاءاللہ. تو پانچ چیزیں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلت, جب عورتیں پانچ چیزیں کر لیں تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے, جس دروازے سے, یہ پانچ چیزیں. اس میں سے میں نے دو چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کی میری مائیں اور بہنیں, سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں, کبھی نماز نہ چھوڑے, سب کچھ چھوٹ جائے. نمبر دو, رمضان کے روزے رکھے, جب رمضان کا مہینہ آئے اور اگر قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لیں. اور تیسری چیز میں نے بیان کی ستر, شرمگاہ کی حفاظت, یہ تیسری چیز ہے. ابھی دو چیز ہے, شوہر کی فرما برداری اور اولاد کی تربیت. انشاءاللہ یہ پانچ چیزوں پر عمل ہوگا تو یقیناً وہ عورت مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. یا ارحم الراحمین, یا ذوالجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا دیان و یا سلطان یا قدیم الاحسان. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم. اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، درس حدیث کو قبول فرما، اس میں آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بہت ساری مائیں اور بہنیں مدرسے میں بیٹھ کر آئی ہے سننے کے لیے، الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما، ہم سب بھائیوں کا آنا قبول فرما، ایک ایک قدم کو اور اس درس حدیث کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، عفو عافیت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، اپنی زندگیوں میں صحیح راستے پر چلنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ اس درس کی برکت سے ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما، ہماری آل اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ اس حدیث کی برکت سے اے اللہ ہمارے چہروں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو نورانی بنا دے. اے الہ العالمین ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جہاں جہاں لوگ مکسلر کے ذریعے، ای مسجد کے ذریعے، ریسیور کے ذریعے اور یہاں مدرسے میں بیٹھ کر اور مسجد میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی، ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما. اللہ ایمان پر قائم دائم رکھنا اور ایمان پر موت نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، الہ العالمین ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ اور ہمارے درس حدیث کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم اجمعین برحمتک یا رب.